ओम शांति। आदरणीय कर्णा भाई जी का हम इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करते। आप हमारे इस यज्ञ के वरिष्ठ भाई हैं। 1960 से ही आप ज्ञान में हैं, तब से आपने अपना जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित किया। आपने साकार मम्मा बाबा की भी पालना ली, वो सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ। लौकिक में आप इंजीनियर थे और दक्षिण भारत में कई स्थानों पर आप सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। 1971 से आप मधुबन में समर्पित हो गए और मधुबन में आप पीआरओ ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं। मीडिया विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने कई देशों की यात्रा की और साइंस के आधुनिक साधनों को ईश्वरीय सेवाओं में प्रयोग लाने का श्रेय भी आदरणीय करुणा भाई जी को ही है। इसलिए दो शब्द कहूंगी। बेहद के साधनों से बेहद सेवा का आधार बने। पीएमटी टीवी के द्वारा घर घर बाबा का संदेश पहुंचाने के आप कर्णधार बने। पीएमटी टीवी के द्वारा घर घर बाबा का संदेश पहुंचाने के आप कर्णधार बने। प्यासी आत्माओं को मार्ग दिखाने अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के सूत्रधार बने। मीडिया विंग की सुदृढ़ नींव रख। यज्ञ विस्तार के आप निमित्त बने। करुणा भाई जी ने जो बाबा के साथ के अनुभव है वो हमें भी सुनाकर आज साकार बाबा के साथ हम सब मिलन मनाएंगे, साकार मम्मा बाबा के साथ। ओम।
ओम शांति। मुझे कहा गया बाबा मम्मा के साथ का अनुभव जो मैंने देखा जो मैंने पाया वो आपके सामने कुछ शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। मम्मा जी के साथ 5 साल, बाबा जी के साथ 9 साल मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा सारे विश्व में ये शिव संदेश राजस्थान से पहुंचा गया, ये खुशी मुझे भी है। जब मैं बेंगलोर में था मुझे हृदय पुष्पा दादी जी ने 3 दिन के कोर्स के बाद जब मैंने पूछा आपको ये संदेश कहां से मिला, उन्होंने कहा आबू पर्वत में स्वयं भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। ये शब्द मैंने सुना, स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। आप सोचिए उस समय पर क्या हुआ होगा। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था सचमुच निश्चय बुद्धि बच्चे जिनको निश्चय हो वो नंगे पांव भी भाग के आएंगे अबू पर्वत ये बाबा का कहना था। और तीसरे दिन ज्ञान सुनने के बाद मैंने कहा फिर तो मैं अबू जाना चाहता हूं, ये मैंने दादी जी को कहा था। फिर भी मुझे ज्ञान में पक्का कराते हुए, सभी राज बताते हुए 3 मास के बाद मैं अबू पर्वत पहुंचा बाबा का दर्शन के लिए। तो आप समझ सकते हो मेरा अनुभव उस समय पर क्या होगा। पहली बात, आप जानते हैं जितने भी जो द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ति विशिष्टाद्वैत शंकराचार्य रामानुजाचार्य ये सारे पंत सौत से आरंभ हुआ था। संतों की कोई कमी नहीं थी, धर्मों की कमी नहीं थी। आप जानते हैं क्रिश्चियन धर्म भी भारत में सौत से ही आया था। इतना सब कुछ होते हुए भी एक शब्द जो स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, जो दादी जी ने कहा, उसकी जो निर्मल हृदय और जो सत्य वचन और उनकी जो मुख कमल से जो प्रकाश था, वो मुझे इतना अभी तक याद है कि ये संदेश उन्होंने जो सुनाया, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, ये अनुभूति मुझे तब हुआ था। इसीलिए जब मैं अबू पर्वत पहुंचा, मेरा प्रथम अनुभव यही रहा, साकार बाबा को देखते हुए। बाबा की पूर्ण जन्म कथा मैंने पढ़ चुका था, जगदीश भाई से भी सुन चुका था। कितने बड़े व्यापारी थे, आज के मिलियनियर बिलियनियर भी कुछ नहीं है जो बाबा उस समय के इतने बड़े डायमंड व्यापारी थे। फिर भी जब मैंने आके देखा, इतना साधारण पर्सनैलिटी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि इतना महान, धन से भी संपन्न होते हुए और आध्यात्मिक में भी इतनी सरल और इतनी सिंपल उनका जीवन देख के, मैं जिसको कहा जाता है भगवान आया है वो तो मैं जब अनुभव करूं, पर पहले मैंने इनको देखते ही मेरे मन में ये आया कि गुरु जिसी का हो तो यही है। तो ये विश्वास मुझे बाबा के ऊपर प्रथम बार हुआ, जिसको लोग कहते हैं कि लव इन फर्स्ट साइट। मेरा भी बाबा के साथ यही रहा, जो पहली बार की ही मिलन में मैंने कहा यही मेरा गुरु रहेगा, ये मेरा निश्चय बाबा को देखते हुए हुआ। दूसरी, हम लोग बहुत साधु संतों से सुनते आते हैं, महान आत्माएं, वो लोग जो भी पढ़े हैं हमको बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। विशेष मुझे भगवद गीता का प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा लगता था, चिन्मय आनंद जी का। मैं कॉलेज लाइफ से उनका बहुत प्रेम से सुनता रहा था। जितने भी संत हैं बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते और उनका सुनने में बहुत अच्छा लगता था, पर जब कभी उनके समीप जाने का होता तो जो हम सुनते हैं और जब उनके जीवन में थोड़ा भी अंतर देखता था तो वो भावना पर थोड़ा सा असर होता था। मैं जब अबू में 7 दिन रहा पहली बार, रात दिन साकार बाबा और मम्मा को देखता रहा। बाबा मुरली में कहते थे सी फादर एंड मदर, इसीलिए मैं बाबा और मम्मा को इतना नजदीक से देखता रहा कि जो ये सुनाते हैं क्या ये स्वयं भी ऐसे ही चलते हैं। मुझे आज भी कहने में संकोच होता है, सुना भी हूं, उन दोनों को देखा भी हूं कैसे फॉलो करते थे, पर आज भी हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं जितना मेरे बाबा मम्मा ने किया, जिनको हम नंबर वन कहते हैं। मुझे वो दिन याद है, मम्मा साथ में बैठी होती थी दूसरे संदली पर, बाबा मुरली में कहते थे, बच्चे बाबा से मम्मा नंबर वन, बाबा से मम्मा नंबर वन, ऐसे बाबा कहते थे। पर मम्मा कभी भी खुश नहीं होती और कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ दृष्टि नीचे रहता था। परंतु मैं जानता था कि दोनों में नंबर वन कौन है वो कभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाते थे, क्योंकि बाबा की विशेषता बाबा की, मम्मा की विशेषता मम्मा की। मैं पहले मम्मा का सुनाऊं आपको, जो बाबा कहते थे नंबर वन। मम्मा में पहली विशेषता मैंने ये देखी कि मैं उस टाइम पर बहुत छोटा 20-21 साल की उम्र के, मम्मा ने मुझे जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, मां कैसे उनको एक अच्छा बनाना है, जिसको हम कहते हैं भाई शिवाजी कैसे बने, उनकी मां ने उनको वो संस्कार दिया। जितने भी बड़े लोग हैं उनको कहा जाता है उनकी मां से उनको संस्कार आया, तो इसी प्रकार मम्मा का मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कहो आशीर्वाद कहो कि बच्चे को कैसे आगे लाए, ये प्रयास जैसे कोई मां अपनी छोटे बच्चे को हाथ पकड़ करके कैसे चलाते हैं, इस प्रकार मम्मा हम बच्चों के साथ इतनी मेहनत करती थी। हम दादियों से सुनते हैं तो सारे यज्ञ को मम्मा ने कैसे संभाला, किस तरह से आगे लाई, हर दादी मम्मा को याद करते हैं। परंतु मेरा भी अनुभव ये रहा, भले 5 साल मम्मा के साथ रहा, 3 मास मम्मा लास्ट में बेंगलुरु में रही, तो मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये कि भले एक छोटा सा बच्चा भी होगा उम्र में, मम्मा उनको आप कह के बुलाती थी। मम्मा आत्मिक दृष्टि से ही देखती थी, कभी उम्र की दृष्टि से मम्मा ने कभी किसी को नहीं देखा था। दूसरी, मम्मा सदा ही ये प्रयास करती थी इस बच्चे को कैसे लायक बनाओ, दूसरा कोई इच्छा नहीं। जैसे हम कभी किसी को देखते हैं कि इस आत्मा से हम क्या सेवा लेवे, इस आत्मा से क्या सेवा हो सकता है, पर मैंने चाहे बाबा से चाहे मम्मा से कभी ये न देखा कि हम से क्या सेवा होगा। नहीं, बाबा मम्मा का पहला यही लक्षण देखा कि हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना, लायक कैसे बनाना, ये उन दोनों में सबसे बड़ी क्वालिटी देखी। और मम्मा ने सचमुच यहां तक बाबा के साथ कैसे चलना, क्योंकि अनुभव तो हो चुका था कि ब्रह्मा और शिव बाबा एक ही तन में है, स्वयं भगवान भी है, ब्रह्मा बाबा भी महान आत्मा है, वो भी दोनों एक ही तन में है। उसके साथ आप पिता कहो दोस्त कहो, सका कहो, किसी भी संबंध से उनके साथ आप चल सकते हैं। बाबा ने कहा, परंतु मेरे से वो नहीं हो पाया। मुझे मम्मा ने सदाई यही सिखाया कि बाबा को आप देखते हो तो आप केवल शिव बाबा को ही देखते हो। ये मुझे मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। और बाबा के सामने जब भी मैं जाता हूं, मुझे दो बाबा नहीं नजर आते थे, एक ही बाबा नजर आते थे, जो वो शिव बाबा है। मैं ये बताना चाहता था, मम्मा ही एकमात्र, हमारी जानकी दादी भी कभी कभी कहती है कि बाबा के अंदर कभी दो नहीं देखा, हमने एक ही बाबा को देखा, वो शिव बाबा। ये मम्मा की पहली धारणा थी। दूसरी, जितनी रेस्पेक्ट बाबा को मम्मा देती थी वो किसी और में मैंने नहीं देखा। बाबा के साथ सभी आत्माएं, जितनी दादियां हैं, जितनी हम भाई हैं, बाबा को कई बार हाथ पकड़ के खेलते, कितनी सरल रूप से बाबा के साथ चलते थे। बाप बच्चे के रीति से कई बार बहुत सहज सरल रूप से हम लोग हंसते बैलते खेलते बाबा के साथ रहे। पर मम्मा को हमने ये कभी नहीं देखा, बाबा के सामने मम्मा कभी इस तरह से नहीं, हमने नहीं देखा। मम्मा को सदा बाबा जैसे स्वयं भगवान, वो अनुभव सदा मम्मा करती थी। यहां तक मम्मा की नजर सदा ही बाबा का सामने भी नीचे रहता था। मम्मा में सबसे बड़ा गुण जिसको कहते हैं अंतर्मुखता या गंभीरता। मम्मा को बहुत हंसते हुए बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मम्मा का अनेक फोटो आपको मिलेंगे पर कभी हंसता हुआ इतने नहीं मिलेंगे, एक आधा है। नहीं तो मम्मा की गंभीरता की रूप को हमने देखा। तो मम्मा से सीखने के लिए हम लोगों को, मुझे याद है एक बार मम्मा एक हॉल के अंदर साइलेंस में जैसे घूम रही थी। मम्मा को साइलेंस बहुत अच्छा लगता था। मम्मा के नजदीक आते ही साइलेंस का अनुभव होता था। तो मम्मा ऐसे ही हॉल में घूम रही थी बाबा की याद में, तो मैं दरवाजे पर खड़ा था। एक दिन का अनुभव है वो, मम्मा मुझे देखे और मम्मा बुलावे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। परंतु एक दिन मुझे इतना आश्चर्य हुआ, लगभग 5 मिनट तक मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और मम्मा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। मुझे लगा क्या हुआ, आज मेरे से कोई गलती हुई, मम्मा आज मुझे बुला नहीं रही है। तो मैं तो अपने ही इसमें सोच में चलता रहा। फिर अचानक 5 मिनट के बाद मम्मा ने कहा, अरे करुणा आ जाओ आ जाओ। तो बाबा मुरली में सुनाते हैं कि देखते हुए न दिखे, सुनते हुए न सुने, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने मम्मा को देखा था। जो लगन और मगन क्या होता है वो मैंने मम्मा से सीखा। हमारे रमेश भाई सुनाते हैं, मम्मा को जब ही कार में ले जाते हैं तो आप जानते हैं बंबई जैसे शहर में नई नई बड़े बड़े होर्डिंग्स एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए होते हैं। तो एक बार मम्मा से पूछा मामा आपने देखी ये होर्डिंग्स, ये एडवर्टाइजमेंट कितने अच्छा है। तो मम्मा का जवाब था, इस कलयुग की कोई भी चीज मम्मा को नहीं दिखती है। मम्मा की गंभीरता के साथ साथ ज्ञान के मथन के बारे में देखो, बाबा तो सागर है। बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो उसमें सब बातें आ जाती है इकट्ठे ही, ज्ञान की भी, योग की भी, धारणा की भी, सेवा की भी, सब बातें एक मुरली में आ जाता है। परंतु मम्मा कभी एक पॉइंट लेती है तो पूरा आधा घंटा केवल एक ही पॉइंट पर मम्मा सुनाती थी। भाषण करना, समझाना, किसी भी पॉइंट पर मथन करना, ये हम सभी ने मम्मा से सीखे हैं। दादी भी बहुत बार कहती थी, प्रकाशमणि दादी जी, तो मम्मा से ही हम सभी ने भाषण करना सीखा है। तो मम्मा में ये भी विशेष कला होने के कारण बाबा कहते थे मम्मा सरस्वती है, मम्मा के मुख में स्वयं भगवान की वो वरदान है। मम्मा की तीसरी विशेषता है, कभी कभी कहते भी है, मम्मा धर्म रानी है। किसी बात की फैसला करना भी है तो मम्मा के ऊपर जवाबदारी थी। एक फैमिली में 300-400 लोग रहे, आप समझ सकते हो संस्कारों का कहीं भी कुछ भी किटपिट हो सकता है, तो पर उसकी फैसला मम्मा के सामने होती थी। वो कैसे था मैंने आंखों से भी देखा और दादियां भी सुनाते हैं। सबको मालूम होता है परिवार में किसने क्या गलती किया, तो समझो उसको मम्मा के सामने पेश करते थे। तो यही समझते थे कि बस आज मम्मा इसकी अच्छी तरह से कर लेगी। परंतु होता क्या था, मम्मा जो भी आत्मा होती है उसके सामने बस दृष्टि देती है। दृष्टि देते 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 जो आत्मा कभी अपनी भूल नहीं मानते हैं, जो आजकल इस बात का विशेष प्रभाव है, परंतु मम्मा के सामने कोई भी कैसी भी होंगे, बिना मम्मा के पूछे, बिना मम्मा उनसे पूछे, केवल दृष्टि मात्र सामने वाली आत्माओं के आंखों में आंसू आने शुरू हो जाता है। जो आज हम इतना समझाते हैं लोगों को, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, कभी भी मम्मा मुख से किसी को इस प्रकार की नहीं कहती थी। मम्मा की नजर में सत्यता की शक्ति इतनी थी, जो आत्माएं अपने आप आंखों में आंसू आता, अपने आप मम्मा के सामने प्रयास करते हैं कि भाई मैं, मेरे से ऐसी गलती हुई। और मम्मा गले लगाती, प्यार करती और कान में यही कहती, ये मशहूर है मम्मा के लिए, कि ये गलती फिर दोबारा नहीं करना। ये होती है मम्मा की शिक्षा, और वो आत्मा जिंदगी तक के लिए वो शिक्षा अपने दिल में रखते हैं। तो इस प्रकार मम्मा धर्म रानी होते हुए भी बिना किसी शिक्षा के जरूर शिक्षण देती थी। तो जिस प्रकार सारे यज्ञ को मम्मा ने बड़े किए। मुझे याद है जब मैंने मम्मा के सामने एक बार कहा, मम्मा मेरे से ये बात सहन नहीं होता है। बहुत दुखी था मैं, तो मम्मा ने कहा, अच्छा तो हमने सुना आजकल कोई कुकर नया निकला है जो खाना बनाने का, उस समय की बात मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा, हाँ मम्मा ये बहुत अच्छे कुकर निकले हैं, वो जब पक जाता है कू आवाज करता है। अच्छा, तो जब भर जाता है इसके अंदर प्रेशर तो वो कू आवाज देता है, तो आप यही तो नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा, मम्मा ने हमको अच्छी तरह से पकड़ लिया, तो जब भर जाता है तो फिर जैसे आवाज करती है तो वैसे हमने भी, कि मम्मा ने ऐसा कहा जो ऐसे करते हैं तो वो समझो ये प्रेशर कुकर है, तो हमको प्रेशर कुकर नहीं बनना है। सहन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो सहन किया वो कुछ नहीं है जो बाबा मम्मा ने इस यज्ञ की स्थापना में किया है। तो इसीलिए वो दिन और आज दिन तक मैं ये कभी नहीं कहता हूं मम्मा मेरे से ये सहन नहीं होता है। ये शब्द कभी मन में आएगा तो भी मम्मा जैसे सामने आ जाती है। तो प्रैक्टिकल शिक्षा कैसे मम्मा बाबा ने दिया जो हम सब बच्चों को यहां तक लाए, और मम्मा की पर्सनल पुरुषार्थ का जो बाबा हमको इतना समझाते हैं कि अमृत वेला उठो, सारे दिन बाबा की याद में रहो, ये हमने प्रैक्टिकली मम्मा के लाइफ में देखा था। मम्मा के लिए ये कहावत मशहूर है, मम्मा कभी 2:30 बजे के बाद सोई नहीं है दिन रात को। अमृत वेला मम्मा का 2:30 बजे हो जाता था, तो हम लोग अभी तक भी 3:30 के लिए कभी कभी आगे पीछे होता हुआ अनुभव हम सब करते हैं। परंतु नंबर 1 बाबा मम्मा क्यों है, इस बात का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मम्मा बाबा भी हमारे जैसे मेहनत करके ही 1 बने हैं, कोई जादू से नहीं। इसी प्रकार साकार बाबा का भी हमने ये देखा कि बाबा के लिए, शिव बाबा के लिए तो हम कहते थे वो जागती ज्योत है, परंतु मैंने अपने आंखों से देखा ब्रह्मा बाबा भी जागती ज्योति थे। जब कभी भी किसी भी टाइम पर बाबा के कमरे के पास भूल से जाए कोई, पहरे वाला भी कोई भूल से वहां उनका पांव का थोड़ी भी स्टेप्स का आवाज आए, कमरे से आवाज आता था बाबा का, कौन है बच्चे, कभी सोच भी नहीं सकते बाबा जगे हुए होंगे इस समय पर। तो ये अनुभव हम सबका है, ये बाबा कब सोते थे, बाबा कब जागते थे, हमने कभी नहीं देखा। तो बाबा भी जैसे शिव बाबा जागती ज्योत है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा का भी जीवन हमने जागती ज्योत के रूप में पुरुषार्थ करते हुए। मुझे याद आता है कि लच्छू दादी जो बाबा को खाना देते, बाबा की सेवा में थी, तो जब भी खाने के टाइम पर बाबा उनको कहते थे, बच्ची मैं कभी भूल जाता हूं तो आप मुझे याद दिलाना, कि बाबा याद है। तो बाबा स्वयं, जिनमें हम कहते हैं शिव बाबा आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई मैं बाबा को नहीं भूलूं, और उनको कहते हैं मुझे याद दिलाओ। तो अपनी पर्सनल पुरुषार्थ के बारे में बाबा को कितना निगाह था, प्रैक्टिकली हमने देखा है। बाबा स्वयं लास्ट में भी बाबा खुद 1/2 घंटा शाम को स्वयं बैठकर संदली पर योग कराते थे, लास्ट दिनों में भी। तो बाबा को योग के ऊपर कितना अटेंशन था वो हमने प्रैक्टिकली बाबा के लाइफ में देखा। ज्ञान तो बाबा सुनाते ही है, उसमें भी बाबा को खुशी होती थी कि बच्चे शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं ना, तो ये बाबा नंबर वन पहले सुनता है, क्योंकि यहां और यहां का डिस्टेंस बहुत कम है और आपको तो वहां सुनना पड़ता है। तो बाबा को ये खुशी थी, मैं पहले, सबसे पहले मैं सुनता हूं। तो ज्ञान में भी बाबा कैसे नंबर वन, योग में भी बाबा की याद में भी कैसे बाबा नंबर वन, और सेवा की तो प्रैक्टिकली लास्ट डे बाबा शरीर अव्यक्त होने से पहले भी जितने लेटर्स लिखे हैं सब बच्चों को याद दिए हैं, वो भी आपको कभी हमारे यीशु दादी से या दादियों से सुनना चाहिए। कैसे बाबा सारे कारोबार जो मधुबन में चल रहा था वो सब कुछ देख करके लास्ट तक भी। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा तो बाबा की रॉयल्टी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनका बोल, चलन, सब कुछ। सिर्फ बाबा जब सुबह मुरली चलाते थे संदली पर बैठ के, उस टाइम पर रूप ही अलग था। जो सारा दिन हम बाबा के साथ, जो इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना रॉयल बाबा के साथ जो व्यतीत करते हैं, पर जब बाबा संदली पर बैठ के जब मुरली चलाते हैं, उस समय पर रूप ही अलग होता था। हम छोटे छोटे थे, हमारे साथ भी दूसरे जो छोटे बैठते थे, हम सामने एकदम बैठे, तो जब मुरली शुरू करने से पहले एक बाबा का गले का आवाज निकलता था तो हम एक दो को बोलते थे, शेर आया, शेर आया। मानो उसी से हमको मालूम है कि अभी बाबा नहीं हुए, अभी स्वयं शिव बाबा इस शरीर पे आना है। अभी भी बाबा का आवाज रिकॉर्ड किया हुआ रखा है, आप सभी सुन सकते हैं। वो कोई ब्रह्मा की ओरिजिनल वो नहीं है, वो एक शिव बाबा का ही है वो। क्योंकि सारा दिन ब्रह्मा के साथ हम बात करते, कभी बाबा इतना मधुर, इतना मीठा, पर शेर का जो आवाज है वो आज भी आप बाबा के इसमें सुन सकते हैं। शिव बाबा कब आते हैं, कब जाते हैं, इसकी भी अनुभव हम लोग करते थे उस समय पर। जब कभी भी बाबा के सामने दृष्टि लेते हैं, उस समय पर ब्रह्मा बाबा नहीं होते थे, स्वयं शिव बाबा होते थे। इतनी पावरफुल, और कभी हमको बाबा से जाने का दिल नहीं होता था, बिना रोए कभी भी नहीं जा पाते थे हम लोग। इतनी बाबा की प्रेम की शक्ति का, आनंद का हम लोग अनुभव करते थे। और मुरली पर तो शिव बाबा का अनुभव तो हम सब करते आए हैं। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की जो पार्ट है वो भी प्रैक्टिकली देखने का एक सौभाग्य बाबा ने इस कल्प में हमको दिया। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, हर बच्चे का कल्याण कैसे हो। जैसे लौकिक पिता अपने बच्चे के बारे में, जब तक वो बच्चा इतना समझदार बन के, होशियार बन के हो जाए, तब तक जैसे बाप हर बात में बच्चे को गाइड करते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा हम सबको हर प्रकार से गाइडेंस करते रहे। चाहे लौकिक आपकी व्यवसाय हो, चाहे लौकिक फैमिली हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, बहुत क्लियर बाबा हम बच्चों को गाइडेंस देते थे, बच्चे ऐसे करो। तो आज जितने भी निमित्त बाबा के बच्चे हैं, जो आज इस कारोबार को, बाबा के इतने बड़ा कारोबार को कैसे संभाल रहे हैं, ये सारी शिक्षाएं बाबा, जैसे सबसे ज्यादा रमेश भाई भी सुनाते हैं, किस प्रकार बाबा इस कार्य को मैनेज करने की जो सिस्टम है वो साकार बाबा से ही हम लोगों ने सीखा है। आज मैं राजस्थान के आप सभी भाई बहने निमित्त आए हैं, तो आप सबके सामने एक बाबा की जो आशा है, जो बाबा की प्रत्यक्षता की जो कार्य है, जैसे सारे विश्व में परमात्मा का संदेश प्रसार होने का निमित्त राजस्थान बना, अबू बना, तो बाबा के शांति स्तंभ आप सबने देखी हो और उसमें एक शब्द बाबा ने लिखवाया था, अबू सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ महान तीर्थ है, ये इसमें लिखा हुआ था और उसमें नीचे लिखा है ये बात सभी को समझाओ। इसमें अभी तक थोड़ी सी हमारी कमी रही है। हम सब जानते हैं 5000 साल के बाद स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, तो वो सृष्टि में कहां आते हैं, जहां आज भारतवर्ष में आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोग कहां जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, अंबाजी जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, पर केवल हम बच्चे ही जानते हैं कि स्वयं भगवान केवल अबू में ही आते हैं। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 16 साल से हम जो 10 लाख बाबा के बच्चे आज सारे विश्व में सेवा कर रहे हैं, हम सब जो इतने जो भी बने हैं, वो इसी हॉल से, इसी स्थान से स्वयं परमात्मा ने हम सबको बनाया है, ऐसी हॉल में आप बैठे हैं। विश्व में सबसे बड़ा महान तीर्थ ये स्थान है जहां हम सभी आज बैठे हैं, और ये भावना स्वमान आपको है, मुझे पता है, परंतु दुनिया नहीं जानती है। भावना से, भगवान के लिए भावना से धक्का खा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, परंतु जो स्वयं भगवान आकर के सारे विश्व का कल्याण किया, वो स्थान कौन सा है, जो बाबा कहते थे हम बच्चों को, 3 साल से बाबा कह रहे हैं, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, कहां, यही है, यही है, यही है, ये बात आपको अभी सारे विश्व में बताना है। तो जो ये समझते हैं कि हम वो स्थान में बैठे हैं, वो हाथ उठाए, देखो आप सबको ये ज्ञान भी है और अनुभव भी किया है सभी ने। मुझे ये सीन याद आता है, जो पहला ग्रुप विदेश के, दूसरे धर्म के, 2000 से ज्यादा भाई बहने थे, सभी देशों से आए थे, इसी हॉल में बैठ करके उन्होंने बाबा का अनुभव किया। वो समय अभी आ रहा है जो बाबा ने कहा था, आबू में क्यों लगेगा, बाबा का महावाक्य था, साकार बाबा ने देखा था, शिव बाबा ने दिखाया था, तो ये प्रत्यक्षता अभी इस समय पर धीरे धीरे, ये जो स्थान पर आप बैठे हैं, ये स्वयं भगवान पिछले 16 साल से हम सब बच्चों को इतने बड़े बनाए हैं, वो इसी स्थान से है, यही वो महान तीर्थ है, यहां से ही सारे विश्व अनुभव करके जाएगा। बाबा की ये भी एक महावाक्य था कि सभी धर्म के धर्म संस्थापक भी इस स्थान पर आएंगे, वो समय भी अभी आ रहा है। मुझे ये शब्द कानों में गूंजता है, अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट बने, उससे पहले यहां थे, बाबा से मिलके गए, प्रेसिडेंट बने, उनके मुख से मैंने ये सुना था, ऐसा समय भी आएगा जो कोई दिल से बाबा को याद करते हुए इस डायमंड हॉल का एक राउंड भी लगाते हैं तो उनकी सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इनों को कहना था, जो आज भी हमारे गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता जी, ये जो कैड का प्रोग्राम चला रहे हैं, सचमुच मैं देखता हूं जो चल नहीं पाते हैं ऐसे लोग आते हैं जो इस डायमंड हॉल का राउंड लगाते हुए दौड़ना शुरू करते हैं। केवल 7 दिन के अंदर उनको इतनी शक्ति मिल जाती है, ये किसकी शक्ति है। तो आज हम 10 लाख बाबा के बच्चे, ये हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं कि मेरा बाबा आ गया, यही है, यही है, यही है। तो इसी स्थान से वो शक्ति हम सबको प्राप्त करना है। तो अब थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि हमारी दादियां भी दर्शनीय मूर्त होंगे, इसी स्थान से उनकी दर्शन भी सभी करेंगे और उस दर्शन के लिए बाबा भी आएंगे और दादियां भी हमारे सामने हैं और विश्व के सामने ये जो स्थान आप बैठे हैं इसकी महत्व इतना हो जाएगा। मुझे यही है कि आज आप सभी कितनी आनंद से बैठे हैं, शायद बाबा कहते थे नींद करने भी टाइम नहीं देंगे, ऐसा समय आने वाले हैं। इसलिए आप सभी बहुत लक्की हो, महान लक्की हो, आप इस स्थान पे अभी बैठे हैं। तो ओम शांति। हम अभी बाबा की याद में 5 मिनट बैठेंगे।
सबसे से न्यारा सबसे प्यारा मीत ये मन को भा गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया
बाबा आ गया मेरा बाबा